नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और इन दिनों परमेश्वर के वचन भजन संहिता से अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीख रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आप अपने भक्तों को नई बातों को सिखा रहे हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है प्रभु, आज भी आप हमें सिखाएं, हमसे बोले, बातचीत करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, निराश हैं, चिंता और तनाव में हैं, अशांति में हैं। आप उनकी सहायता करें ताकि आपके दास भजनों के द्वारा से आशीषों को प्राप्त कर सकें। इस समय फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भजन संहिता 82 से। इस भजन का अर्थ गलत ही निकाला जाता है। मसीह यीशु के ईश्वरत्व को स्वीकार न करने वाला आलोचक इस भजन का ठट्ठा करता है। यह एक और भविष्यवाणी का भजन है जो परमेश्वर की प्रजा इसराइल के भविष्य की ओर देखता है। हम इसके साथ परमेश्वर की महिमा देखते हैं और इन दोनों को एक साथ लाने का एक अद्भुत प्रकाशन उत्पन्न होता है। यह महाक्लेश में परमेश्वर के दंड और शेष रहे भक्तों के उद्धार की भविष्यवाणी है। तो आइए हम भजन संहिता 82 उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, परंतु सहस्त्र वर्षीय राज्य में ऐसा ही होगा। कई ईश्वरों के बीच में न्याय करता है, ये ईश्वर कौन है? भजन संहिता 82 उसके दो पद में लिखा है, तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? धर्मशास्त्र के इस पद को समझना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर न्यायियों को ईश्वर कहता है क्योंकि वे उसके स्थान पर हैं। तब हम भजन 82 उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु जब फिर से आएगा, वह गरीबों, अनाथों, कष्ट में पड़े और आवश्यकता ग्रस्त मनुष्यों की रक्षा करेगा। मृत्यु दंड के विपक्ष में एक विवाद यह है कि धनवान तो अपराध का दंड ना पाए, परंतु कंगाल को पूरा दंड मिले। विवाद यह है कि दंड की असमानता के कारण दंड का निराकरण कर देना ही उचित है। परमेश्वर न्यायियों से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम कंगालों और अनाथों का पक्ष लो। आज विवाद का विषय है कि कंगाल को बराबर का अवसर दिया जाना चाहिए, नया मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा तो भजन लिखने के समय से ही है। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर राज्य करेगा, तब वह गरीबों, अनाथों और आवश्यकताग्रस्त मनुष्यों का पक्ष लेगा। आज के न्यायी परमेश्वर के स्थान में खड़े हैं, इसलिए उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मित्रों, यह एक रोचक पद है। भजन संहिता 82 के 5 में लिखा है, वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। निश्चय ही आज का संसार डावाडोल है और बड़ी अव्यवस्था में है, जिसकी एक महान समस्या है पृथ्वी के न्यायी। पिलातुस के समान न्यायी होना आज कठिन नहीं है, जो हाथ धोकर कहे, मैं मृत्यु दंड की इस पार्श्विक विधि से विश्वास नहीं करता। वह सोचता है कि इस प्रकार वह बच जाएगा, परंतु नियमों का उल्लंघन करने वाला जब उसके समक्ष होता है, तब उसे भूलना नहीं चाहिए कि कानून अंधा है। यदि कोई धनवान अपराध करे और मृत्यु दंड का दोषी हो, तो उसे भी एक कंगाल की नाई उपयुक्त दंड मिलना ही चाहिए। दुर्भाग्य से अपराध का दंड पाने वाले बहुत कम धनवान हैं। भजन संहिता 82 के 6 पद में लिखा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। तुम ईश्वर हो, उसके कहने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु के ईश्वरत्व पर प्रश्न करने वाले यहूदियों को यीशु ने यही कहा था कि वे उस पर ईश निंदा का दोष लगा रहे थे जब उसने स्वयं को ईश्वर के तुल्य दर्शाया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 33 से 37 पद में हम पढ़ते हैं, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो। यीशु यहूदी धर्म गुरुओं से कह रहा था कि वे न्याय के स्थान में हैं, और जब कोई न्याय करता है तो वह परमेश्वर के स्थान में होता है। अनेक पवित्र जन ऐसे व्यवहार के दोषी हैं, वे अन्य पवित्र जनों का न्याय करते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 4 अध्याय उसके 3-5 पद में पौलुस लिखता है, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। पौलुस के कहने का अर्थ है कि एक दिन वह परमेश्वर के समक्ष खड़ा होगा और इस कारण वह स्वयं अपना न्याय नहीं करता है। मेरे मित्रों, जब आप किसी का न्याय करना आरंभ कर दें तो आप परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं, क्योंकि आप एक न्याय के रूप में सत्य और असत्य के बीच खड़े होकर उसका न्याय करते हैं जो परमेश्वर करता है, और इस कारण आप ईश्वर हो जाते हैं। वर्षों पूर्व की बात है कि एक बार एक न्यायाधीश न्याय से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह एक दंपति का न्याय कर रहा था जिन पर गुप्तचर होने का आरोप था। वह न्यायाधीश एक यहूदी था और उसने बताया कि निर्णय देने से पूर्व की रात उसने प्रार्थना में व्यतीत की। उस दंपति का न्याय करते समय वह परमेश्वर के स्थान में था, क्योंकि उन पर लगाया गया आरोप सरकार के विरुद्ध था। उस स्थान पर नियुक्त मनुष्य को ईश्वर भक्त होना आवश्यक था, उसे प्रार्थनाशील मनुष्य होना था। हमारी समस्या अपराधियों की उतनी नहीं है जितनी न्यायियों और न्याय एवं व्यवस्था के चरमराने की है। यह बड़ी विचित्र बात है कि न्याय और व्यवस्था का चरमराना विधि के ज्ञाताओं द्वारा है, न कि अपराधियों द्वारा। आप जब भी किसी पर न्यायिक निर्णय देते हैं आप परमेश्वर के स्थान में खड़े होते हैं। माता पिता को इसका बोध होना है, परमेश्वर किसी परिवार में बढ़ रहे बच्चे से क्या कहता है। कुलुसियों के पत्र 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है, हे बालको सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब यदि उसके माता पिता उसे उचित मार्ग में न ले चले और उसका पालन पोषण वैसा न करे जैसा करना चाहिए, आज ऐसे अनेक माता पिता हैं। परमेश्वर कहता है कि वह माता पिता से लेखा लेगा, क्योंकि वे उसके स्थान में हैं। वे परमेश्वर के स्थान में इसलिए हैं कि नीति वचन 1 अध्याय के 8 पद में परमेश्वर उस बालक से कहता है, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। परमेश्वर ऐसे माता पिता पर दया करे जो अपनी संतान को परमेश्वर के मार्गों का ज्ञान नहीं देते। किसी ने प्रश्न किया, नरक जाने से अधिक बुरा क्या है? एक महान प्रचारक ने इसका उत्तर दिया, नरक जाकर अपने पुत्र की वाणी सुनकर पूछें, हे पुत्र तू यहाँ क्या कर रहा है, और उसका उत्तर सुने, पापा मैं आपके चरण चिन्हों पर चल रहा हूँ। मेरे प्रियो, यह एक अति अनुपम भजन है। परमेश्वर न्यायों से कहता है, सुनिश्चित करो कि तुम्हारा निर्णय न्याय सम्मत हो। तुम ईश्वर हो और तुम सब परम प्रधान की संतान हो। भजन संहिता 82 के 7 पद में लिखा है, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। परमेश्वर उसके स्थान में उपस्थित न्यायियों को स्मरण कराता है कि वे मनुष्य ही हैं और एक दिन परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। भजन संहिता 82 के 8 पद में लिखा है, हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। यह इसराइल की प्रार्थना है और मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि मैं उनके साथ प्रार्थना कर सकता हूँ। हे परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय कर, हे परमेश्वर तू ही है जो सब जातियों को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। यह पृथ्वी तेरी है, तू इसका न्याय कर। मेरे विचार में हम सब आज के समय में यह प्रार्थना कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर भजन 82 समाप्त होता है और अब हम भजन 83 में आते हैं, जिसका विषय है न्याय की पुकार। गीत आसाफ का भजन है। यह आसाफ के भजनों का अंतिम भजन है और चकित करने वाला है। सच तो यह है कि आप इस भजन को इसराइल के इतिहास में यथास्थान नहीं बैठा सकते। अब क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कल्पना करने का विचार ही उचित है। परंतु कुछ कल्पनाएं तो वास्तव में सीमा ही पार कर गई हैं। यह दंड की प्रार्थना है, न्याय की पुकार। भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसकी प्रजा को बैरियों से बचाए। भजन संहिता 83 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, हे परमेश्वर मौन न रह, हे परमेश्वर चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। मेरे प्रियो, बैरी जो भी हो वह यहाँ परमेश्वर से घृणा करता है और बैरी का तो यही काम है, नहीं क्या? भजन संहिता 83 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इसराइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। यह उन लोगों के विषय में है जिन्होंने इसराइल के विनाश का षड्यंत्र रचा। कुछ टीकाकार इसे यहोशापात के युग की रचना कहते हैं और कुछ अन्य ऐतिहासिक युगों में। परंतु ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि परमेश्वर के बैरी उससे घृणा प्रकट कर रहे हैं। अब हम भजन का वह भाग देखेंगे जिसे इतिहास में यथा उचित स्थान देना कठिन है। भजन संहिता 83 के 5 से 8 पद में लिखा है, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इश्माइली, मुआबी और हुग्री, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिस्ती हैं। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं, उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। अशूरी अर्थात अशूर जाति, लूत के वंशज मुआब और अमोन हैं। यहाँ जो भी नाम आए हैं वे परमेश्वर के वैरी हैं। इतिहास में उनका उचित स्थान नहीं है, अतः यह एक विशिष्ट अंश है, क्योंकि ये पद भविष्य को निहारते प्रतीत होते हैं। स्पष्ट है कि ये जातियां जो कभी थी एक बार फिर उभरेंगी। आज इसराइल अरबों द्वारा घिरा हुआ है, वे सब इसराइल के विरोधी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन जातियों का यह नाम है वे भविष्य में फिर उभरेंगी। वे आज तो विलोप हैं और उनका कोई भी स्थान नहीं है। इस तथ्य के कारण भजन संहिता 83 एक आश्चर्यजनक भजन हो जाता है। शेष भजन में परमेश्वर के दंड की याचना है। अब क्योंकि भजनकार कहता है कि जैसा परमेश्वर ने पूर्व में दंड दिया वैसा अब भी दंड दे, यह भजन अतीत के विचार से भी संबंधित है। तो आइए हम पढ़ें भजन संहिता 83 उसके 9 और 10 पद में, इनसे ऐसा कर जैसा मिद्दानियों से और किशोन नाले में सिसरा और याबीन से किया था, जो एंदोर में नष्ट हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। न्यायों की पुस्तक में उन जातियों पर परमेश्वर के दंड का वर्णन है। कुछ लोगों के विचार में परमेश्वर भविष्य में उन्हें दंड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसने यदि पूर्व काल में उन्हें दंड दिया होता तो वह भविष्य में भी उन्हें दंड देगा। परमेश्वर बदलता नहीं है, इस कारण यह आदेशात्मक है। जी हाँ, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि यह हम विश्वासियों की प्रार्थना का नमूना नहीं है। हमें प्रार्थना करना है कि हमारे बैरी दंड पाने की अपेक्षा मन फिराकर परमेश्वर के निकट आ जाएं। तो आइए हम देखें इसराइल की प्रार्थना। भजन संहिता 83:13 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। आपको स्मरण होगा कि इसराइल में दौनी करने के लिए बड़ा पाट चलाया जाता था जिसे बैल खींचता था। भजनकार का कहना है कि उनके बैरियों से परमेश्वर ऐसा ही व्यवहार करे। भजन संहिता 83:14 पद में लिखा है, उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है, अर्थात जंगल में लगी आग स्वरूप उनका विनाश करे। अब उपसंहार पर ध्यान दीजिए। भजन संहिता 83:18 पद में लिखा है, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारे पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। मुझे पूरा विश्वास है कि संसार को परमेश्वर को समझने के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर उन्हें दंड दे। परमेश्वर की भलाई के कारण मनुष्य में मन फिराव आना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। यदि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति और उसके व्यक्तित्व के प्रति संवेदनशील हो तो निश्चय ही वह उसकी उपस्थिति में खींचा चला आएगा, परंतु यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। वह तो परमेश्वर से दूर ही दूर होता चला जा रहा है। हम आज सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि हमें परमेश्वर की गहन आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन 83 समाप्त होता है और अब हम भजन 84 में आते हैं जिसका विषय है परमेश्वर के भजन की उत्कट अभिलाषा। यह एक ऐसा भजन है जिसमें लैव्य बल प्रमुख है। यह भजन कोरह वंशियों के लिए है। कोरह वंशी पहले तो मिलाप वाले तंबू में और इसके पश्चात मंदिर में सेवा करते थे। पहला इतिहास की पुस्तक अध्याय 26 में इस परिवार की पृष्ठभूमि दी गई है। पद 1 में लिखा है, फिर द्वारपालों के दल ये थे, कोरहियों में से मशेलेम्याह जो कोरे का पुत्र और आसाप के संतानों में से था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोरहियों के कुल की एक लंबी सूची है। आपको स्मरण होगा कि कोरह ने मूसा का विरोध किया था और उसे दंड दिया गया, परंतु प्रभु के अनुग्रह से उसके वंशज मिलाप वाले तंबू और फिर मंदिर में सेवा कर रहे थे। तदुपरांत पहला इतिहास 26 अध्याय उसके 12-13 पद में वह कहता है, द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे, वे अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घराने के आधार पर एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। प्रत्येक फाटक पर एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था और उसके लिए चिट्ठियां डाली गई थी। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू की चौकसी के लिए बलिष्ठ और जीवंत लेवियों की व्यवस्था की गई थी। आगे चलकर जब मंदिर बना तब इन्होंने ही मंदिर के फाटकों की चौकसी की। इस कारण इस भजन में मिलाप वाला तंबू और मंदिर ध्यान का केंद्र है। आइए हम भजन संहिता 84:1-2 पद को पढ़ें। लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। क्या आज आपके मन की पुकार यही है? क्या आप परमेश्वर के लोगों से भेंट करना मन भावन प्रतीत करते हैं या उनके आने से आप कुड़कुड़ाते हैं? मैं समझ सकता हूं कि आज आपको अधिकांश कलीसियाओं में पूर्व सहभागिता प्राप्त नहीं होती है, और सच तो यह है कि वहां अन्य किसी बात की अपेक्षा व्यर्थ की बातें और आलोचना अधिक मिलती हैं। तथापि सहभागिता का स्थान कलीसिया ही है। हमारे देश में कुछ अति उत्तम कलीसियाएं भी हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके परिवेशों में भी एक ऐसी ही अच्छी कलीसिया होगी जहां परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है और प्रभु यीशु का महिमान्वयन होता है। यदि है तो आपको वहां सहभागिता की खोज करना चाहिए। वही आपका विकास होगा और आपको आशीष मिलेगी। यह एक मनोहर बात है कि ये कोरह वंशी जो मिलाप वाले तंबू में सेवा करते थे और बाद में मंदिर के सेवक बने, उन्होंने देखा भजन संहिता 84:3 में, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौराया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखे। मेरे विचार में गौरायों ने मंदिर में घोंसला बना लिए थे। इस भजन के लेखक ने दृष्टि उठाकर देखा और कहा, मैं ऐसा ही निवास करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि गौरायों को देखो, उनका कोई महत्व नहीं है, और सच तो यह है कि उनके चहचहाने के कारण आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। उनके बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि क्या एक पैसे की दो गौराया नहीं बिकती, परंतु उनमें से एक भी परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं मरती। इसे हम मत्ती सुसमाचार 10:29 में पढ़ते हैं। यह भाषा जैसी सुनाई पड़ती है उससे कहीं अधिक कठोर है। उसने कहा कि गौराया परमेश्वर पिता की गोद में गिरती है, वह सब कुछ जानता है। भजन संहिता 84:9 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। भजनकार तो कहने योग्य है, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल। परमेश्वर निश्चय ही हमारी ढाल है और हमारे अभिषिक्त का मुख देख, या मसीह के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह वे पृथ्वी पर का मुख प्रकट किया है। जैसा हम देख चुके हैं कि लय व्यवस्था के पुस्तक में इसराइल के संपूर्ण जीवन का केंद्र परम पवित्र स्थान था। जी हाँ, जब आराधनालय हमारा केंद्र था, परंतु अब ऐसा नहीं है। आराधनालय तो आज धार्मिक जीवन का केंद्र भी नहीं है, जबकि यह अति आवश्यक है। भजन संहिता 84:10 में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। देखिए वह क्या कहता है, तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है। मैं परमेश्वर के भवन का द्वारपाल होना अधिक उत्तम समझता हूँ, अपेक्षा इसके कि दुष्टता के मंडप में वास करो। कोरह वंशियों का यही काम था, वे द्वारपाल थे। वह कहता है कि मैं परमेश्वर से दूर एक धनवान मनुष्य होने की अपेक्षा मैं अपना द्वारपाल का काम संभालूं तो अधिक अच्छा होगा। रविवार की आराधना में कुछ लोग बार बार घड़ी देखते हैं कि कहीं प्रचारक साहब अधिक समय तो नहीं ले रहा है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन रहना कहीं के हजार दिन से उत्तम है। यह कैसा महिमामय भजन है, परंतु कुछ के लिए यह झिड़की भी है। हम भजन संहिता 84:12 में पढ़ते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आज मैं और आप किस पर भरोसा रखते हैं? क्या इस बदलती और तड़क भड़क दुनिया में हम लोगों पर भरोसा रखते हैं या कर सकते हैं, या उस परमेश्वर पर जिसने मुझे और आपको रचा है, हम किस पर भरोसा रखते हैं? मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन में झांक करके देखें और अपने आप को जांचें और कहें कि प्रभु, मैं आज कहाँ हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी निकटता में आना चाहता हूँ। जी हाँ, जिस प्रकार भजनकार कहता है कि परमेश्वर के मंदिर के उस डेवड़ी में समय देना उसके लिए उत्तम है, इससे बढ़िया कि वह 5-स्टार होटल में रहे। आप अपना समय कहाँ देना चाहते हैं? आप किस पर भरोसा करना चाहते हैं? आइए आज अपने आप को हम सब प्रभु को दे दें और कहें, प्रभु, हमें भी इस भजनकार की तरह अपनी निकटता में आने में मदद कर। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक बातों को सीखा है और आप एक सही निर्णय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
वो खुदा मेरा चरवाहा है।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
वो खुदा मेरा चरवाहा है, मेरे दुश्मनों के सामने तू मेरा मेज लगाता है। खुशहाल करता है मुझको, भरपूर मेरा प्याला है और मुझको प्यार दिखाता है। वो खुदा मेरा।